नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एयरलाइन इंडिगो ने बुधवार को कहा कि यात्रियों को G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द होने के बारे में सूचित कर दिया गया है। इंडिगो की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मद्देनजर इंडिगो 8 से 11 सितंबर 2023 के बीच दिल्ली से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बार की छूट की पेशकश कर रहा है। कंपनी ने कहा, ग्राहकों को पैसे वापस लेने के साथ ही उड़ानें पुनः निर्धारित या रद्द करने का विकल्प दिया जा रहा है। यात्रियों को उड़ान रद्द होने और समय सारणी में बदलाव के बारे में पहले से सूचित कर दिया गया है। इसमें उन उड़ानों की संख्या की जानकारी नहीं दी गई जिनके प्रभावित होने की आशंका है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। भारत सप्ताह के अंत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी डिजिटल ताकत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें आधार और UPI जैसे प्रौद्योगिकी मंचों को दर्शाने के साथ गीता ऐप के जरिए जीवन को समझने का मौका भी मिलेगा। राजधानी के प्रगति मैदान में नव निर्मित सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में 9 एवं 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए समूचे नई दिल्ली क्षेत्र को विशेष रूप से सजाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत मंडपम में डिजिटल इंडिया का एक अनुभव क्षेत्र भी स्थापित किया, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में देश को हासिल प्रौद्योगिकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहां पर विदेशी मेहमानों को पवित्र ग्रंथ गीता की शिक्षाओं एवं उसके दर्शन को समझने का मौका एक विशेष ऐप के जरिए मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए बुधवार को 3,760 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर कोष को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना से संबंधित 3,760 करोड़ रुपए की समूची राशि का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि ये कोष वर्ष 2030-31 तक 5 किश्तों में जारी किया जाएगा। इससे 4000 मेगावाट घंटे का ऊर्जा भंडार तैयार करने में मदद मिलेगी। ठाकुर ने कहा कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण से 9500 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भंडारण प्रणाली की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रियों से कहा है कि भारत के साथ FTA पर वार्ता प्रगति पर है और देश केवल उसी समझौते पर सहमत होगा जो ब्रिटेन के हित में हो। इस सप्ताहांत में नई दिल्ली में G20 विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर आने से पहले सुनक ने ये बयान दिया। सुनक ने मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापार वार्ता पर अपने मंत्रियों को अद्यतन जानकारी दी। अभी तक इस संबंध में 12 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। सुनक ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में भारत को ब्रिटेन का अपरिहार्य भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि वह संबंधों को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। भारत ने बुधवार को कहा कि वह G20 की अध्यक्षता के तहत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावी ढंग से आगे लाया है। इस दौरान कृषि कार्य समूह मोटे अनाज सहित दो पहलुओं पर ऐतिहासिक सहमति लेकर आया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये ऐतिहासिक है, क्योंकि जब से कृषि कार्य समूह गठित हुआ है तब से खाद्य सुरक्षा और पोषण दो प्रमुख एजेंडा रहे हैं, लेकिन कभी भी कृषि मंत्रियों ने मंत्री स्तरीय संवाद के अलावा कोई एकल स्तर पर घोषणा नहीं की है। जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस ने उपग्रह और मोबाइल फोन सेवा नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के लचीले इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई को पत्र लिखा है। कंपनी ने 5 सितंबर को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन PD वाघेला को लिखे पत्र में कहा कि प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है जो उपग्रह तथा स्थलीय नेटवर्क के अभिसरण को सक्षम बनाएगी। इसीलिए नियामक को स्थलीय तथा उपग्रह सेवाओं के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी के लचीले इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए। पत्र में जियो सैटेलाइट ने 24 से 30 GHz बैंड में उच्च फ्रिक्वेंसी के लचीले उपयोग की अनुमति देने के लिए न्यूजीलैंड सरकार के फैसले का हवाला दिया। कंपनी ने कहा कि न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल की आर्थिक विकास समिति ने सैटेलाइट तथा मोबाइल सेवाओं के लिए 24-30 GHz बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है। देश में अभी संयुक्त राष्ट्र निकाय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्णय के आधार पर सेवाओं के एक विशेष सेट के लिए स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को निर्धारित किया जाता है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने गुजरात में लगभग 230 करोड़ रुपए से 4 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गुजरात की बनास डेयरी के साथ करार किया है। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। सुजुकी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी सुजुकी R&D सेंटर इंडिया NDDB और बनास डेयरी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर बुधवार को टोक्यो में हस्ताक्षर किए गए। जापानी कार विनिर्माता कंपनी ने बयान में कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य गाय के गोबर से बनने वाली बायोगैस से मीथेन को परिष्कृत करके वाहन ईंधन बनाना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।